पिछले अध्याय में आपने देखा कि मेहरा खानदान जयपुर पहुंच गया है, वेद बच्ची में खोया है और उसकी तलाश में है। गेस्ट मेहरा फैमिली से मिलते हैं और वेद बच्ची पर है। माया निराश हो जाती है। सुधांशु और दीपक वेद से गर्लफ्रेंड के बारे में पूछते हैं। रमेश और वेदांत वेद और माया को देख रहे हैं। बलवंत मेहरा वेद को लेकर परेशान है। सुधीर रुचिका से शादी नहीं करना चाहता और वेद उसे सलाह देता है। माया वेदांत का इंतजार कर रही है पर वेदांत बच्ची से मिलना चाहता है। वेदांत मानवी को रीता के साथ देखता है। माया वेद को नशीला पदार्थ पिलाने की योजना बना रही है पर वेद मानवी पर नजर रखने के लिए अंधेरे कोने में चला जाता है। वेद को दो लड़कियां खतरों से बचाएंगी। अब रीता मानवी से अवनी के बारे में बात करती है जो सो गई है। मानवी को अवनी के स्कूल की चिंता है। वेद मानवी को लॉन में ढूंढता है पर वो गायब है। वेद सुबह मिलने का सोचता है। वेद जो पहले लड़कियों और शराब के बारे में सोचता था अब उस बच्ची के बारे में सोच रहा है। बलवंत मेहरा को वेदांत पर शक होता है और वो वेद की सिक्योरिटी के लिए एक आदमी को लगाता है। बलवंत को डर है कि वेद नाराज होकर विदेश चला जाएगा। वेदिका बलवंत को परेशान देखती है। ब्रजेश मेहरा मौली से सुधीर के बारे में नाराज हो रहा है। रीना देखती है कि वेदांत अपने ख्यालों में खोया है और माया की योजना पूरी नहीं हो सकी। नाउ नेक्स्ट। अगली सुबह बहुत काम भरा था। हर ओर खुशी का था मगर साथ ही जिम्मेदारियां भी कम नहीं थी। ब्रजेश बार बार यही सोच रहा था कि सुधीर और रुचिका की सगाई बिल्कुल ठीक से संपन्न हो जाए, कहीं सुधीर कोई गड़बड़ या नखरा ना कर बैठे। बलवंत का ध्यान लगातार वेद की सिक्योरिटी पर था। दूसरी तरफ रमेश का मन अभी भी खट्टा था। उसे बार बार वेद की बर्बादी की बातें खाई जा रही थीं। वेवांत भी उसी टेंशन में उसके साथ लगा हुआ था। सुबह सुबह मौसम बेहद सुहाना था। हल्की सी ठंडी हवा लॉन में लगे ब्रेकफास्ट टेबल को और भी मनभावन बना रही थी। जो चाहे ब्रेकफास्ट अपने कमरे में मंगवा सकता था और जो चाहे लॉन में आ सकता था। लड़कों में से कोई भी अभी तक ब्रेकफास्ट के लिए नहीं आया था। सब लेट उठने के लिए मशहूर थे मगर आज आश्चर्यजनक रूप से सबसे पहले वेद पहुंच गया था। वो नहा धोकर फ्रेश होकर जीन्स और हल्की सी शर्ट पहन चुका था। ब्रेकफास्ट का मन नहीं था इसलिए उसने बस कॉफी मंगवाई और अकेले टेबल पर बैठकर उसे सिप करने लगा। तभी उसके कानों में एक मीठी पर थोड़ी चिड़चिड़ी सी आवाज़ पड़ी। मुझे माँ की वजह से इतनी जल्दी उठना पड़ा इसलिए मेरा मूड बहुत खराब है। वेद ने मुड़कर देखा। पास की टेबल पर एक छोटी सी बच्ची बैठी थी। उसके पास एक आदमी और उसके साथ 8-9 साल का एक लड़का भी था। बच्ची बहुत मासूम और प्यारी लग रही थी, लगभग 4 साल की। वेद के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। वो अपनी कॉफी उठाकर उन लोगों की तरफ चला गया। अगर आपको ऐतराज़ न हो तो क्या मैं बैठ सकता हूँ? वेद ने शालीनता से उस आदमी से पूछा। जी बिल्कुल बैठिए, आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। वो था शेखर, था वेडिंग प्लानर। उसके साथ उसका बेटा शशांक था और वही प्यारी सी बच्ची टेबल पर बैठी हुई थी। वेद ने बच्ची की तरफ देखते हुए कहा, आपकी बेटी बहुत प्यारी है। वेद की नज़रें उस छोटी बच्ची पर टिकी थीं। मासूम सी हंसी, सैंडविच खाते हुए उसके छोटे छोटे हाथ और आंखों में जिज्ञासा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा तुम्हें याद है हम लोग मॉल में मिले थे उस दिन? बच्ची ने सैंडविच का एक छोटा सा टुकड़ा तोड़ा और चबाते हुए मासूमियत से बोली, हाँ याद है मुझे, हम दोनों मिले थे। वेद हल्के से हंसा, सही याद है तुम्हें। उसने थोड़ी देर ठहर कर पूछा, क्या नाम है तुम्हारा बेटा? बच्ची ने बड़ी सादगी से जवाब दिया, अवनी, अवनी नाम है मेरा। वेद ने उसका नाम दोहराया, अवनी बहुत प्यारा नाम है। शेखर जो पास ही बैठा था मुस्कुराते हुए बोला, असल में ये मेरी बेटी नहीं है, हमारी टीम की मेंबर की बेटी है, मगर इतनी प्यारी है कि हर कोई इसे अपना मान लेता है। वेद ने स्नेह से अवनी को देखा और कहा, सच में बहुत प्यारी है। वेद ने धीरे से अवनी की तरफ हाथ बढ़ाया, बेटा क्या मैं तुमसे दोस्ती कर सकता हूँ? अवनी ने सैंडविच खाते खाते उसके हाथ की तरफ देखा। उसके छोटे से हाथ पर सॉस लगा हुआ था। उसने मासूमियत से कहा, मेरे हाथ गंदे हैं, मैं कहाँ साफ करूँ? उसकी मासूम बात पर वेद जोर से हंस पड़ा, अरे तुमने तो वही बात दोहराई जो उस दिन मॉल में भी कही थी। उसने प्यार से उसका छोटा हाथ उठाया, नैपकिन से साफ किया और फिर उसे अपनी गोद में बिठा लिया। अब ठीक है, अब तो हम दोस्त हैं ना? अवनी ने उसकी आंखों में झांकते हुए सिर हिलाया लेकिन तुरंत ही शरारती अंदाज में बोली, हाँ लेकिन हमेशा के लिए नहीं, मैं हाना नहीं कर सकती, माँ से पूछना पड़ेगा और मामा का मूड भी बदलता रहता है इसलिए मैं अभी प्रॉमिस नहीं कर सकती। वेद उसकी बात पर खिलखिला कर हंसा, अच्छा तो तुम्हारे फैसले भी माम से कन्फर्म करने पड़ते हैं? हाँ बिल्कुल, अवनी ने बड़ी गंभीरता से जवाब दिया। वेद ने सहज भाव से पूछा, अच्छा इसकी माँ कहाँ है? मुझे उससे मिलना है। शेखर ने चारों तरफ लॉन में नजर दौड़ाई फिर बोला, वो आज सुबह से ही बहुत बिजी है, शाम की तैयारी में लगी हुई है, शायद अभी काम देख रही होगी, थोड़ी देर में ब्रेकफास्ट करने आएगी तब आप मिल लीजिएगा। वेद ने धीरे से सिर हिलाया, उसकी चेहरे पर हल्की सी जिज्ञासा झलक रही थी। ठीक है तब तक मैं अवनी के पास ही बैठता हूँ। उसने अवनी के पास अपनी कुर्सी खींच ली बच्ची तुरंत मुस्कुराई और फिर से अपने सैंडविच पर ध्यान देने लगी। वेद ने बड़े प्यार से उसे देखते हुए कहा, तो जब तक तुम्हारी माँ नहीं आती हम दोनों खूब बातें करेंगे और खूब इंजॉय करेंगे। अवनी ने मासूम मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों की चमक ने वेद के दिल में अजीब सी नरमी भर दी। जोया का पहले तो जयपुर आने का कोई इरादा नहीं था। उसने साफ कह दिया था कि वो नहीं आएगी, लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि अयान यहीं रुका हुआ है उसका मन बदल गया। उसने अचानक प्रोग्राम बना लिया और जाने का फैसला कर लिया। असल में अयान सोच रहा था कि जोया यहीं रुकेगी, उसी के लिए वो रुका हुआ था। उसने शादी पर जाने का प्रोग्राम भी इसी वजह से कैंसिल कर दिया था। उसे यकीन था कि जब सब लोग जयपुर जाएंगे तब जोया घर पर रुकेगी और दोनों साथ समय बिता पाएंगे। सुबह जब पूरा घर हलचल से भरा हुआ था तभी फैमिली जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट करके निकल चुकी थी। अब डाइनिंग टेबल पर सिर्फ अयान, उसके अब्बा और अम्मी बैठे रह गए थे। अयान के हिसाब से तो अब तक जोया को भी वहीं होना चाहिए था, मगर उसकी नजरें बार बार चारों तरफ घूमती और हर बार उसे निराशा हाथ लगती। थोड़ी देर तक वो इस उम्मीद में चुप रहा कि शायद उसके अब्बा अम्मी ही कोई बात छेड़ दें, मगर दोनों अपने अपने ब्रेकफास्ट में व्यस्त रहे। टेबल पर अजीब सी चुप्पी थी। आखिरकार अयान से रहा नहीं गया, उसने चुप्पी तोड़ते हुए धीमी आवाज में पूछा, तो सब लोग चले गए, भाईजान और भाभी? उसके अब्बा ने प्लेट से नजर उठाकर कहा, हाँ सब चले गए, बस जोया रह जाएगी। पहले तो कह रही थी कि उसे जाना नहीं है। अयान की आंखों में हल्की सी चमक आई, उसके होंठों पर अनजाने में मुस्कान आ गई, मगर अगले ही पल अब्बा ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन फिर अचानक उसका मूड बन गया तो वो भी सबके साथ जयपुर चली गई। ये सुनते ही अयान के हाथ रुक गए। जो नाश्ता वो बेमन से कर रहा था अब और बेस्वाद लगने लगा। उसके चेहरे से सारी चमक गायब हो गई। जिसके लिए वो पूरी फैमिली के साथ जयपुर नहीं गया था वही तो उसे छोड़कर चली गई थी। उसका दिल जैसे अंदर ही अंदर कह रहा था। टेबल पर रखी कॉफी ठंडी हो चुकी थी, मगर अयान की बेचैनी अब तेजी से बढ़ रही थी। जगत राठौर वहां आया और हमेशा की तरह मजाकिया अंदाज में उसे छेड़ने लगा। असल में जगत को अपने बेटे से पहले ही पता चल चुका था कि घर पर सानवी की खूब तारीफ की जा रही है, खासकर उसके हाथ के खाने की। यही बात लेकर उसने आर्यन को छेड़ना शुरू कर दिया। वेद को पता चल जाएगा कि वो मानवी की बेटी है तब उसका रिएक्शन क्या होगा।
क्या अवनी मानवी और वेद के रिश्ते को जोड़ देगी? प्लीज मेरी सीरीज पर कमेंट करें, साथ में रेटिंग भी दें। आपको मेरी सीरीज कैसी लग रही है कमेंट में बताएं।